نحمده ونصلي على رسوله الكريم المامان. قال الله تعالى في قرآن مجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد، محبت، الفت، اچھے تعلقات، یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے. معاشرہ ہو، گھر بار ہو، اکٹھے رہ رہے ہوں، الگ رہ رہے ہوں، ہر جگہ پر اسلام کا یہ پیغام ہے کہ محبت ہو آپس میں. لیکن ظاہر ہے کانٹوں کے ساتھ پھول تو ہوتے ہیں. محبت ہے تو دشمنی بھی ہو جاتی ہے. اور دشمنی کا معاملہ یہ ہے کہ ان شیطان جنزب انہم، شیطان کا کام ہے کہ جہاں دو انسان ہوں ان میں ایسے وسوسے پیدا کر دے، ایسے غلط فہمیاں پیدا کر دے کہ ان میں دشمنی ہو جائے. دشمنی ہو جاتی ہے، لیکن دشمنی اچھی چیز تو نہیں ہے. دشمنی جو ہے وہ تو بہت بری چیز ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا. ہرگز یہ اسلام پسند نہیں کرتا ایسے معاشرے کو جس میں دشمنی ہو. دشمنی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، جس طرح قرآن بتاتا ہے ہمیں. تو دشمنی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی اس کی پھر برائی بھی کرے گا، چغلی کرے گا تو جہنم، غیبت کرے گا تو جہنم، دشمن پہ حسد بھی ہوتی ہے پھر جہنم، بہتان بازی بھی ہوتی ہے تب بھی جہنم. یعنی انتہا درجے کے گناہ اس دشمنی کے سبب سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک مسلمان کا تو قائم نہیں ہے کہ دشمنی رکھے، اپنا وقت ضائع کرے دشمنی کے اندر. اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں آخرت کے حساب سے. اسلام تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ دل میں بھی آدمی کسی کے خلاف دشمنی رکھے. دشمنی ہوگی تو آدمی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اسی کی طرف دھیان رہتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ادھر دھیان رہے گا، سوچتا رہے گا، تو اس کی ساری جو معاملات ہیں اس میں رکاوٹیں آ جائیں گی. اس کے اپنے جو صلاحیتیں ہیں کسی معاملے میں بھی، وہ بھی بگڑ جائیں گے. اس کو پورا نہیں کر سکے گا، تاکہ یہ عبادات میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، عبادت بھی اچھی نہیں رہے گی، اور سارے معاملات اس کے جتنے بھی ختم ہوتے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسلام میں اس کی جگہ جو ہے امن، شاستی، محبت کو پسند کیا ہے. ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی ہو. اس کی مثال ہم دیکھنا چاہیں تو اسلام کی ابتدائی میں دنوں میں سب چیزیں ملتی ہیں. महाजी जब मदीना मुनव्वर आए, वहाँ अंसार थे, ज़ाहिर महाजीन जो है कुछ भी उनके पास नहीं था, लेकिन ऐसी मिसाल कायम हुई है कि दुनिया में आज तक की मिसाल कायम नहीं हो सकी। कुर्बानी की ऐसी मिसाल मिलती नहीं आप देख रहे हैं, और ना ही आएगी क़यामत तक, लगता है सही। यानी उन सारों ने उनको ऐसे रिसीव किया, ऐसी मोहब्बत पेश की, ऐसी रग़बत और चाहत पेश की उन महाजरीन को, कोई खूनी रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं था, बहुत दूर से महाजिर होकर आए थे, कि घर भी आधा, तिजारत है तो वो भी आधी आधी, दुकान है तो वो भी आधी आधी, बागात हैं तो वो भी आधे आधे, ऑफर कर दी, आधा आप ले लें आधा हम ले लेते, बांधी हैं वो भी आधी आधी, आधी आप आधी, हत्ता ये कि अगर किसी की दो बीवी हैं तो उसने भी कह दिया कि एक बीवी आप ले लें, एक मैं रख लेता हूँ। तो ये मिसाल दी है इस्लाम ने अपने माशरे की, ऐसा सुकून, ऐसा मुझे बताया माशरा, ऐसी चीज़ें किसी कहाँ मिलती हैं। और ये तो इब्तदात को बताया गया था कि हर मुसलमान ने हमेशा ज़िंदगी में ऐसे रहना है, इस्लामिक माशरा जहाँ होगा हमेशा ऐसा होना चाहिए, इसमें गड़बड़ ना हो, इतने जज्बा होना चाहिए कुर्बानी का, मोहब्बत का इंसान के अंदर, इसी तरह इंसान एक दूसरे के लिए कुर्बान करे हर चीज़ को। तो ये अब हम गुजर रहे हैं जिस दौर से, खुद जानते हैं कैसे किस हालात के अंदर हैं, हमारे में कहाँ मोहब्बत है मुझे बताएं, बात बात पे तो दुश्मनी खड़ी हो जाती है, बात बात पे झगड़े शुरू होते हैं, लेकिन ये ऐसा इंसान जो है वो कामयाब नहीं है आखिरत में, ऐसे इंसान की इबादत भी अल्लाह मकबूल नहीं फरमाएंगे। अब ये रिफ्रेश करता है रोज़ा हमें इस मामले पर, रमज़ान है ना, हर पहलू बताया ना, हर साइड पे चलता है रमज़ान, तो इस चीज़ को भी उजागर कर रहा है वो, हमारे सामने पेश कर रहा है कि इस्लाम में मोहब्बत है और तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं है, मामला दुश्मनी पर है, बदलो इसको, रोज़ा कहता है, और ना आख़िरत में जलील हो जाओगे तुम लोग, अल्लाह की रज़ा नहीं मिल सकेगी इस तरह तुम्हें। रोज़ा हमें पैगाम देता है और फिर वो तरीका भी बताता है रोज़ा, क्या अजीब तरीका बताया देखिए रोज़े ने हमें, सुभान अल्लाह। मन फतारी फी साइम, अब ये तरीका है देखें मोहब्बत का, अजीब तरीका है कि किसी रोज़दार का आप रोज़ा खुला दें, सुभानअल्लाह। अब इसकी लॉजिक आप समझें, हिकमत ये क्यों कहा गया है कि किसी रोज़दार का आप रोज़ा खुला दें, अब आप ये इसको सोचें कैसी लॉजिक और विजडम इसके अंदर से, कि कोई आदमी बहुत प्यासा है, आपको समझ लें अपनी मिसाल लेने, भूख भी लगी है प्यास भी लगी है, और सख्त उस वक्त जो आदमी को ज़रूरत है भूख और प्यास की, दुश्मनी समझ लें जिसके खिलाफ हमारे दिल के अंदर बुरी ख्यालात हैं, हम हसद रखते हैं, वो आपके सामने खाना पेश कर देता है, मशरूब पेश करता है, खाने के बाद मोहब्बत बढ़ेगी या दुश्मनी, ज़ाहिर है मोहब्बत बढ़ती है, किसी न किसी दर्जे पे इंसान में मोहब्बत आ जाएगी। अगर उसके खिलाफ कोई दिल के अंदर कीना है या ऐसी की चीज़ है, ऐसी मामला है, उजड़ जाएंगे, मजबूर हो जाएगा सोचने पर, यार ये अच्छा आदमी है। तो रोज़ा हमें याद कराता है कि ये इसका बेहतरीन इलाज है माशरे का, बेहतरीन इलाज है, जिस तरह रोज़दार को तुम रोज़ा खुलाओ और वो कदर करता है उसकी, वो कदर करेगा, पसंद भी करेगा, बल्कि यह है कि अगर शरीर अंदाज से देखो तो उसको दुआएं भी देनी पड़ेंगी, उसके लिए मकफ़ल भी करनी पड़ेगी, और इस काम करने के लिए जो अल्लाह ने कहा है रोजे में कि ये काम करो, जाहिर है रोजे के अंदर एक अल्लाह सुबहाना तआला की बड़ा खूबसूरत अंदाज है इसमें अख्तियार फरमाया अल्लाह ने भी, कि अजीब सुन्नत है अल्लाह की। हमें जानता हमारी तबीयत से कि बंदे जो हैं ये लालच के बगैर हिलते नहीं हैं, तो सारी आदात हमारी सही करने के लिए अल्लाह ने इस रमज़ान में उन आदात को करने पर बड़े अच्छे इनाम रख दिए हैं कि आम दिनों से नहीं करेंगे लेकिन अब ये इनामात के लालच में उन ये काम करना है और इंशाल्लाह रमज़ान में इनको ये आदत पड़ जानी है फिर, और उसका हमेशा फ़ायदा होगा इस पैगाम को कर लेंगे। तो इस काम करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़े इनाम रख दिए इसके अंदर सुभान अल्लाह। मन फत्तार फीसा कहा जिस कोई जो कोई आदमी किसी का रोज़ा खुला देता है तो पहला इनाम देखें कितना ज़बरदस्त है, काना मगफिरत भी है उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। इतना बड़ी बात यह है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाज किया जा रहा है इसके ज़रिए खिलाने के ज़रिए। आज मुझे आदत पड़ेगी कि मैं आपका रोज़ा खुलाऊँ, मुझे आदत पड़ेगी कि मैं किसी को इसमें रोज़े खोलने की दावत दूँ। ख़ास तौर पर अब समझ आ गई इसमें लॉजिक क्या है कि अगर मैं अपने दिल से किसी के मैल को साफ़ करना चाहता हूँ, किसी से हसद को निकालना चाहता हूँ तो उसको इफ्तार की दावत दे दे अल्हम्दुलिल्लाह सीधा, क्योंकि अपना इलाज करना है उसने, अल्लाह के हुक्म पर चलना है उसने, तो अपनी असलाह करनी है। और ये दिल से हसद गिना निकल नहीं उस शख्स के लिए तो इस पर यकीन फ़ायदा होगा, क्यों कि इलाज ये अल्लाह का बताया हुआ है, ये आम चीज़ नहीं है, ये इलाज अल्लाह का बताया हुआ है। जो अल्लाह का इलाज बताया हुआ है तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें इंसान का फायदा असर ना हो उस चीज़ में। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे दिल में किना निकल नहीं रही, मेरे दिल में बड़ी कमज़ोरी है कि बड़ी बात तो गुस्सा कर जाता हूँ, फलां से दुश्मनी है मेरी, फलां से दुश्मनी है आज माशरे में, और इस दुश्मनी के साथ मुझे पता है कि मेरी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, मैं कीना रखता हूँ हसद रखता हूँ, फिर से बात आगे हो जाती है तो मेरी सारी इबादतों ख़त्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा इलाज मुझे मिल गया है रमज़ान की बरकत से, रोज़े ने हमें रिफ़्रेश कर दिया है कि इस किनों को ख़त्म कर, इस दुश्मनी को ख़त्म कर, इस चीज़ बर्बाद कर रही है, तो इसका इलाज क्या बताया सुभान अल्लाह। आम दिनों में यह है कि उस इंसान को आप दावत दें, खाना खिलाएं, अपने पास बुलाएं, खाने में इतनी बरकत हो जाएगी, दावत में इतनी बरकत हो जाएगी इस नीयत से कि अल्लाह ताला ने ये हमें इलाज बताया है रोज़े के अंदर, ये इलाज करोगे तुम जब भी कहो मौका आ जाएगा किसी से दुश्मनी को ख़त्म करने का तो उसकी इब्तदा किसे की जाए, इंसान को दावत दे दीजिए खाने की। अभी तजुर्बा करें इस पर अल्हम्दुलिल्लाह, वो हज़ाती कर सकते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहदे के लिए तस्की के लिए बड़े बड़े मुजाहदे करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह वालों के पास जाते हैं, वक्त लगाते हैं, खानकाहों में जाते हैं, ज़िंदगी लाते हैं, 40 साल ही पता नहीं लगते हैं किधर गए, 50 साल ही पता नहीं लगे उन्हें किधर गए, खानकाहों में बैठे रहते हैं, कितना खौफ और कितना इश्तियाक है उनको अल्लाह से मिलने का, और कितना खौफ है अल्लाह की नाराज़गी से बचने का। आप सोचें ऐसे इंसानों के लिए तो बहुत बेहतरीन इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है। अब ये कि हम सारे इलाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाहों को दामन को पकड़ा हुआ, दरवाजे में बैठे हुए हैं, अपने शेख से ताल्लुक भी रखा हुआ, जिक्र अस्कार भी करते हैं, सारे उन मामलात को पूरा कर रहे हैं जिससे हमारा तस्किया हो, लेकिन इस बीमारी की तरफ हम नहीं देख रहे कि इसको हम कैसे निकालना है। तो रोज़ा बता रहा है बिल्कुल इलाज है इसका, कि वो सब कुछ करने के बावजूद भी इसको कंट्रोल करना चाहता है, तो ये कंट्रोल इस तरह होगी कि उस इंसान से तू इस तरीके से ताल्लुक पैदा कर कि उसको खाना पीना शुरू कर दे उसके साथ। खास तौर पे ये सालकिन के लिए बहुत बेहतरीन पैगाम है, क्योंकि इसको इग्नोर जिसने किया चलिए दुश्मन चलने दो या फला छोड़ो या किसी के खिलाफ हमारा जो कुछ भी है उनको बर्दाश्त, तो ये बहुत सख्त नुकसान है वह इंसान। इस्लाम का ये बुनियादी पैगाम है मोहब्बत, मोहब्बत को फरोग दो माशरे के अंदर। अब हम रोज़े में गुजर रहे हैं और ये कैफियत किसी की है तो यकीनन हमें इस पर कदम उठा लेना चाहिए, अपने लिए दुश्मन ही रखनी चाहिए। वो हैरान हो जाएगा हमारा दुश्मन मुझे दावत दे रहा है, मुझे वो मुंह बनाएगा सब कुछ करेगा, फिक्र ना करना क्योंकि दुश्मन हमने अपनी निकालनी है اور اللہ فضل فرمائیں گے تو انشاءاللہ دشمنی اس کی بھی نکل جائے گی, کیوں اللہ کا بتایا وہ علاج ہے, معمولی علاج نہیں ہے. تو اس کو کم نہ سمجھیں, یہ مجاہدہ جو ہے کم نہیں ہے, اس پہ اللہ نے پھر اجر کتنا بڑا دیا ہے. اجر اس لیے رکھا ہے کہ اگر تو اپنے تزکیے کے لیے, سب اس کے لیے, ورنہ کسی اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں کہ تم روزہ کھلاؤ. اللہ تعالیٰ کیوں کہیں کسی, ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے, کتنی بڑی حکمت. تو اس پہ اتنا بڑا اجر رکھ لیا, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتقا رقبتن من نار, دوسرا کتنا بڑا آرام دیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی تجھے بری کر دیا جائے گا. لگتا ہے یہ صرف اس کھانے کھلانے پر نہیں ہے اتنا بڑا انعام, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کر رہا ہے اور اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے. اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے. بڑا مشکل ہے نا کسی ایسے انسان کو کھانا کھلانا جو آپ کے بارے میں صحیح رائے نہ رکھتا ہو, برا سوچتا ہو, بہت مشکل چیز ہے نا. یہ تو کتنا بڑا مجاہدہ ہے. آپ اسی انسان کے پاس جائیں گے, یار آپ کھانا کھائیں, نہیں یار میں نے کھانا کھاتا, وہ آپ کو دھتکار رہا ہے. اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ فکر نہ کر, بے شک تو تجھے وہ ذلیل کرے جو کچھ بھی کرے, اور تو خالص اس کو برداشت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر, تو اس رضا پر میں تجھے انعام دے رہا ہوں کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں, میں تجھے جہنم سے آگ سے نکال دوں. اگلی تو بڑی بات ہے سر اسی مسئلے پر. وکان لہو اجرا مثلہ, یہ عجیب بات ہے. اور فرمایا کہ جو روزدار ہے جس کا تو روزہ کھلا رہا ہے, سبحان اللہ, اس سے بھی تجھے اجر دلاؤں گا. اللہ اکبر, اس سے بھی اجر دلاؤں گا. اجر کیا؟ کہ جو اس نے ثواب رکھا سارا ثواب تیرے لیے ہے, وہ تجھے دے دیا جائے گا. کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا یہ, مجھے لگتا ہے. سوچیا کتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا, آئی ڈاؤٹ, کیونکہ ہمیں اس طرح دھیان ہی نہیں نا. کون دیتا ہے یہ پیغام, مجھے بتائیں کون سمجھاتا ہے یہ بات. اس کو ہمارے نزدیک کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن کتنے اس کے اندر اللہ نے انعامات چھپائے ہوئے ہیں. گناہوں کو ختم کر رہا ہے, دوزخ سے بچا رہا ہے, اور جس شخص کا ہم کھلا رہے ہیں اسے پتہ ہو نہ ہو, اللہ اس کے تمام ثواب کو جو اس نے رکھا ہے سارا کا سارا تیرے ہی عمل کے اندر ڈال رہا ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دیکھیں کیا کیا چیزیں پیدا کی. اب لیکن اس پہ ہی بتا دیے کہ اس کا تو ثواب دے دیا جائے گا تجھے سارا, بالکل. لیکن ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی کیا ہوگا کہ اس آدمی نے جس کو تم نے کھانا کھلایا ہے, جس کا ثواب تیرے پاس آ گیا, اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, وہ ویسے رہے گا. انجن کو سا اجر, اس کے نقصان نہیں ہوا, انجن کو سا اس کے نقصان نہیں ہو, اس کے اجر کے اندر اس کو نہیں پتا. تو یہاں یہ دیکھیں ایک بڑی چیز لگتی ہے کہ یہ ایک روحانی تعلق اللہ نے پیدا کر دیا اس انسان کے ساتھ. دیکھیں اس دشمن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فعل پر ایک روحانی تعلق پیدا کیا اندر کا, جو اتنی دشمنی رکھتا ہوگا یقیناً اس کا اندر سے بدل جائے گا, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طور پہ ایک دوسرے انٹلیکٹ کر دیا. اس کا ثواب اس کو جا رہا ہے, اس کے ثواب میں کمی نہیں آ رہی, اور وہ جو دے رہا ہے الحمدللہ وہ بھی اپنی ہی روح کی طرف سے روحانی کیفیت پہ وہ اس کو آفر کر رہا ہے کھانا. تو دونوں روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملا دیا. جب روحانی تعلقات اتنا مضبوط ہو جائے گا تو دشمنی رہے گی کہاں پھر بھائی؟ تو اللہ کا بتایا ہے اللہ سے. کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی پرنسپل, کوئی قانون اتنا خوبصورت دشمنوں کو نکالنے کا علاج نہیں بتا سکتا. لیکن کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے محسوس ہی نہیں کیا, اور ہم نے چاہا ہی نہیں کہ ہم کسی سے دشمنی ختم کریں یا کسی کے معاملات کو خراب کریں یا میرا روزہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے, سمجھے نا, تو ہم نے اس پر قدم ہی نہیں اٹھایا. صحابہ کرام نے یہ بات سنی, وہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے نا, फौरन उठ गया एक साहब, कहने जी ये तो रोजा खिलाने आप फरमा रहे हैं तो इलाज है, तो मैं तो कैसे करूंगा, मैं मेरे पास तो कुछ है नहीं खाने के लिए, मैं कैसे दूं, मैं हम तो चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सुबहानल्लाह, वो जमात ऐसी थी ना कि वहां ये ड्रामा नहीं था सुन के बस ये बात आ रही है जो अल्लाह की तरफ से ठीक है देख रहे, नहीं नहीं नहीं, हालांकि इतनी बशारतें, वो कहते हैं हमारे कीने नहीं है, हमारे तो किसी दुश्मनी नहीं है, हम तो बख्शे बख्शाए लोग हैं, नहीं नहीं, उन्होंने कभी बारे में अपनी सोचा नहीं कि हम तो बड़े अल्लाह वाले हैं, हम तो बड़े सूफी हैं, हम तो बड़े आलम हैं जी, हम तो बड़े मोहदिस हैं, हमें क्या जरूरत है हम तस्किया करें, हम क्या जाके टके के आदमी के पास खानका में जाके अब दो जानू हो और उसके साथ अल्लाह का जिक्र करें, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग तुम्हें कहेंगे क्या हो गया, आप तो इतने बड़े आदमी थे कि इतने छोटे आदमी के पीछे लगे हुए इसके खानका में बैठे आप ये काम कर रहे हैं, ये भी तो चीज़ है ना, एक किबर तो होता है ना आदमी में, चितान भी तो है ना, हर तबके के इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा, यही नहीं कि सब एक ही तबका जाएगा, हर तबके में वार करता है, हर एक के साथ काम कर रहा है, हम क्यों जाए जी, हमें क्या जरूरत है तस्की, हम तो बस बख्शे बख्शाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये जो काम कर रहे हैं ये कम काम है, ये तस्किया नहीं है, ये भी कहते हैं लोग, ये तस्किया नहीं हो रहा, ये जिक्र नहीं है, हम वहां जाए एक आदमी वो कोई आलिम है, कोई आलिम है उसके पास जाए, हम तो बहुत बड़ा आलिम हैं, हम तो बहुत बड़े ये हैं, हम तो बड़ा ये डर लगे, लेकिन सहाबा थे, अल्लाह ने मिसाल किसकी दी है, सहाबा से दी है कि जिनसे बड़ा ना कोई आज तक क्यामत तक मुत्तकी होगा, ना तस्किया जिनका हो चुका होगा वैसा होगा, उनका तस्किया सुबहान अल्लाह, हम तो कराते हैं शेख से तस्किया, उन्होंने कराया था इमामुल अंबिया से तस्किया, सुबहान अल्लाह, हम तो शेखों के पास जाते हैं ना, अल्लाह वालों के पास जाते हैं तस्किया के लिए, और सुबहान अल्लाह हमारी तो जिंदगी ही लगती ना 40 साल 50 साल, और वहां क्या था, आया नहीं देखा नहीं और तस्किया हो गया, और ऐसा तस्किया हो गया जा क्यामत तक तेरे जैसा इंसान ही नहीं हो सकता, तेरे अमल को नहीं पहुंच सकता। अब यहां साबित एक चीज होती है कि कोई नजर भी कोई चीज है, सुबहान अल्लाह, सोहबत भी कोई चीज है इंसान बनने के लिए, इसका भी कोई असर होता है, क्योंकि स्टार्ट ही यहां से किया है अल्लाह सुब्हान बताया कि इंसान का तस्किया स्टार्ट ऐसे होगा कि जब तक कोई उस माशरे में उस मुकाम का आदमी नहीं होगा जिसको अल्लाह ने पसंद कर लिया होगा, उसका महबूब बंदा होगा, उसके अंदर वो नूर ऐसा पैदा किया होगा अल्लाह ने, वो नूर उसके अंदर रखा होगा कि जो भी उसके पास आएगा उसके चेहरे को देखेगा उस नियत से कि वो ठीक होने आया है, तो इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा, खाली जा नहीं सकता, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चलेगी क़यामत तक चाहे लोग कितनी बातें बनाए, लेकिन जिसने सही होना होगा चाहे कोई हो किसी मुकाम का आदमी हो उसको किसी के सामने जाना ही होगा, कोई चीज इंसान का तस्किया नहीं कर सकता, कोई हमारा तो हो रहा है हम भी कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल साफ है, हमें क्या पता कितने ऐब होंगे, उनको क्या पता, कभी शीशे के सामने खड़ा हो तो पता चले कि साफा सही बंधा ही नहीं बंधा, सुरमा सही लगा ही नहीं लगा, मूंछें सही कटी ही नहीं लगी, जाना पड़ता है ना जी के सामने, तो मियाँ ये इतना फ़ख्र से क्यों ऐसी बातें करते हो, जो इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए और जिस इलाज से तमाम सहाबा कराम बने, सदीक से लेके आखिरी सहाबी तक सारे के सारे सहाबी इसी से बने, कोई सहाबी इसके बगैर नहीं बना, यानी एक मुकाम रखता है इश्क के अंदर सहाबियों के बाद, एक शख्स इश्क का मुकाम रखता है ऐसा मुकाम कि उस शख्स की ज़ियारत के लिए हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को भेजा गया, ऐसा शख्स था वो, था हुज़ूर के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद जिसकी मोहब्बत का अंदाज ये था कि पता चला हो तो मैं एक दांत गया, इश्क ने तकाजा यह कि सारे दांत ही निकाल दिए, बहुत कहने की बात है, एक दांत हिल जाए तो पता लग जाता है, पत्थर से लेके पूरे दांत निकाल दियो, इस इश्क को कोई पहुंच सकता है, सब कुछ होने के बावजूद वो नजरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं आया था तो साहबी नहीं बन सका, साहबी मुकाम इतना हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली करीम रज़ी और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वहां जाना मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ कराना, लेकिन साहबी नहीं बने, ताबी बने, क्योंकि तस्किया तो वहीं से होगा, जब तक कोई किसी शेख के जूते नहीं उठाएगा तस्किया नहीं हो सकता उसका, और उसके लिए नियत साहबी वही साहबी बनता था ना जो ईमान की नियत से आता था, और उसी नियत पे कायम रहा, उसके साथ गया, तो मुरीद वही मुरीद तसिया करा सकता है कि जो पहले दिन से था, तरक्की हो उसके मोहब्बत में शेख के साथ, कमी ना हो। जो भाग गया और कमी होगी वो कभी मुस्तफीद नहीं हो सकता। कि सारा मेरे भाइयों ये सिलसिला वहीं से चल रहा है। और अल्लाह के नजदीक कामयाब वही शख्स होगा, अल्लाह ने फरमा दिया अताब कल सलीम, जो तस्किया शुदा मेरे पास आएगा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, इतना दोगे जो मेरे पास आएगा, साफ सुथरा जो आदमी मेरे पास होकर आएगा, उस शख्स को मैं नमाज भी कबूल करूंगा, उसका उम्रा भी कबूल करूंगा, उसका हज भी कबूल करूंगा, उसकी तस्वीर ब्याह भी कबूल करूंगा, उस शख्स के जो कल नहा धोकर साफ होकर आएगा। और इसकी सफाई कहीं नहीं है, इसका पॉलिश कहीं नहीं है, इसका गुसल कहीं नहीं है, इसका गुसल एक ही है, सुभान अल्लाह। आदमी बेनजीर होते हैं है? जिनकी नजरों में अल्लाह ने तासीर रख दी। रखने वाला कौन है, ये सिस्टम बनाने वाला कौन है, तो हमने तो नहीं ना बनाया जिस पे हम एतराज करें। एतराज करने वाले तो वही होंगे जिन्हें कुरान पर एतराज किया, जिनमें किबर होता है कि हमें क्यों नहीं नबी बना दिया, हमें क्यों नहीं रुतबा दे दिया, हम तो बहुत बड़े चौधरी थे, वो कहां गए, उनके हशर क्या हुए। तो भाई अल्लाह की दी हुई तरीके निजाम पर कह के ये तो नहीं है, हम मानते इसको, हम तो कबूल करते, ये इंतहा किबर है, तो उस अंदाज की किबर है। और जो झुक गया, परेशान हो गया, तलाश में लग गया कि मुझे कोई ऐसे नजर वाला मिले कि जिसकी सोहबत में मैं जाऊं और मुझ पे नजर मारे और मुझे पाक कर दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको रस्ते तक पहुंचा देता है। आओ उठाओ के देखें अकाबरीन की जिंदगी, देखें कोई जाहिल नहीं थे। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अल्लाह उनके नूर से भर दे कब्र को, उस मैं कहता हूं कि उस माशरे में, उस जगह पर और उस शहर में, बल्कि उस मुल्क में उस वक्त हजरत से बड़ा कोई आलम नहीं था, मुफ्ती कोई नहीं था। खैर मदारिस के सारे मुफ्तियान, मुफ्तियान आजम सारे के सारे हजरत के सामने बैठ होते थे, बड़े बड़े उलमा कलाम आते थे, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह दो इलम थे उनके पास, इल्म जाहिर भी था, इल्म लुदनी भी था। और इल्म जाहिर जहां से सीखा वो ऊंची जगह से, कैसी कैसी सोबतें अख्तियार की, हजरत रशीद गंगवी की ज्यारत की, हजरत शेख के साथ हम असर रहे दस बार, कम दर्जे का शेख नहीं, सुभान अल्लाह, ये मेरे लिए कितना बड़ा एजाज है कि उनकी मैंने ज्यारत की, जूती उठाई है और उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स को महबूब करता हूं, मैं फख्र से कहता हूं ये बात, सब लोगों के सामने। आज तक भी जब जाता हूं तो सारी जमात सिर्फ इस लफ्ज पर, वो जानते हैं बिल्कुल निकम्मा आदमी है, जाहिल है, ना इसके पास अमल है, ना इल्म है, कुछ भी नहीं, हूं भी ऐसे ही बेकार आदमी है, बिल्कुल डब्बा, कुछ भी झूठा, मतलब दुनियादार पक्का। लेकिन इस एक फेल पर जो हजरत ने ऐलान कर दिया था, उसको मुझे याद है, उस वक्त जो मजमा था, बहुत बड़ा मजमा था, और मुफ्ती अब्दुल सत्तार, मुफ्ती आजम थे पाकिस्तान, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह, खैर मदारिस के शेख हदीस थे, वो उसमें हजरत की ज्यारत के लिए आए थे, उनको इशारा हुआ था हजरत शेख की तरफ से, वो उनके खुल्फा में से थे, इशारा जाओ फला जगह पर एक शेख नकुंदी बैठा है, उससे जाके फैज हासिल करो। तो वो उस वक्त आए थे, तो कैसा रूहानी मजमा होगा, वो उनके साथ 70-80 उलमा कलाम थे उस वक्त, पाइक उलमा कलाम, इतने बड़े मुफ्ती थे वो, 70-80 उलमा थे जो उनके साथ आए हुए थे। तो उस वक्त हजरत ने उंगली करके उस पूरे मजमे में इस फकीर की तरफ इशारा किया, मैं बिल्कुल कोने में बैठा था, इशारा करके कि ये मेरा अजीज है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। समझ रहा हूँ कि ये कोई मौका है बात करने का, मैं खुद हैरान हो गया, अल्लाह आलम से क्या मतलब था, तो अल्लाह ही जाने, वो हजरत ही जाने। तो ये कुछ भी हो जाए मेरे भाइयों, जो कुछ भी हो जाए, ये मिलता कहाँ से है, ये तो मिलता जूतियों से, अल्लाह वालों के मिलता है ये चीज, वहीं से मिलती है। तो ये तरीका भी अल्लाह का बताया हुआ है ना, तस्किये के अल्लाह ताला करता है, इस चीज को निकालना चाहते हो रोजे के अंदर, तो ये ना समझो कि भाई हम रोजा हमारा नहीं, बहुत बेसिक चीज है कि अंदर इंसान को अपना झांकना चाहिए हर वक्त कि मेरे किसी खिलाफ दुश्मनी तो नहीं है, कीना तो नहीं है। अब निकालने का बेहतरीन तरीका है, अब सभी खड़े हो गए, कह जी मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब हर तबके का आदमी होता है, कह जी मैं इसकी दावत कैसे करूं, मैं इसका खाना कैसे खिलाऊं। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने एक उसमें एक बेहतरीन चीज पेश फरमा दी कि हर आदमी ये काम कर सकता है, क्योंकि तस्किया हर आदमी के लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है तस्किया। तब तक नहीं कराएगा तो कामयाब नहीं हो सकता, कल्ब सलीम नहीं बन सकता। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह ने लब कुशाई फरमाई, आपके लब मुबारक से फूल झड़ने सुबहानअल्लाह, जिस सहाबी ने चुन लिए। तो फरमाया अच्छा ये बात है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फरमाया ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक खजूर हो जाए तब भी कोई बात बन जाएगी, एक पानी का घूंट पिला तब भी बात बन जाएगी, एक लस्सी का घूंट पिला तब भी बात बन जाएगी। लेकिन ये याद रखना कि हैसियत तो हो कि जनाब यारा आप लंगर चला दें और आप कहें नहीं जी खजूर से काम चल जाएगा, ये नहीं। जो जिसकी हैसियत है उसके मुकाबले में, ये तो स्टार्ट दिया है ना उसका, क्योंकि जितना गुड़ उतना मीठा। इस इलाज में आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना मीठा। एक बड़ी सियाफत करेंगे उसको दुश्मन को राजी करने के लिए, अल्लाह उतने देगा। एक आदमी खजूर है तो उस खजूर में वही बरकत पैदा कर देगा जो एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त में होती है। उसको खजूर ना समझना, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसके साथ में खजूर है। लेकिन अल्लाह का खजूरी दे दे तो खजूर का मतलब यह इस खजूर से मैं तेरे दुश्मन को राजी कर दूंगा। वो ऐसे जाके चिपकेगी उस पर, उसका ऐसा असर होगा कि जैसा कि एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त के बाद एक आदमी शर्मिंदा हो जाता है, ये उससे भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा कि तेरे रब ने कह दिया इस खजूर में मैंने पूरी इस दावत की, पूरी दावत का असर पैदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है, देखे अल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों ये कौन पैगाम दे रहा है हमें, रोजा। रोजे रिफ्रेश कर दी इस चीज को भी कि दुश्मनी को कैसे खत्म किया जाए। दुश्मनी का माहौल हमारे इस्लाम में नहीं है, आपस में दुश्मन के साथ घरों के अंदर नहीं रहना चाहिए, आपस में नहीं रहना चाहिए। हाँ वही मैंने कहा, कांटों के साथ, फूलों के साथ तो कांटे होते ही हैं, डंडे तो खड़कते हैं, लेकिन इलाज फौरन। घरों में जहाँ दुश्मनी है आपस के अंदर, बच्चों में बीवियों में सब, इस तरह मत रहो, क्योंकि उस रहने में सारी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह नाराज रहेंगे। भाई क्यों नहीं इलाज करते, ये रोजा बता रहे, क्यों नहीं करते? आपस में गिफ्ट दो, हदीये दो, खाने दो, मियाँ बीवी आप एक दूसरे दें, देखें अल्लाह ताला दिलों तो अल्लाह के, कलूब तो अल्लाह के अख्तियार में है। जब अल्लाह के हम एक तरीके को, एक इलाज को उठाएंगे तो फौरन अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देंगे। लेकिन इस तरह रहना, जिंदगी गुजारना एक अल्लाह वाले की तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी अल्लाह वाले के लिए तो जो अल्लाह अल्लाह करता हो, जिक्र करता हो, उसके तो बिल्कुल है ही नहीं ये कि भैया इस तरह जिंदगी गुजारे कि फलां से भी दुश्मन यूरफ नहीं। जब तक उसको नींद ना आए, जब तक कि उसके दिल से वो मैल निकाल ना दे। मेरे बारे में सोचा क्यों? वो कह जी मेरे तो इतने पैसे देने थे, पैसे देने थे। अच्छा, बस जब तक वो उतने पैसे ना दे, या उससे माफी ना मांगे, या उसको क्लियर ना करे कि भैया ऐसा नहीं मामला, ये मैं घर का मामला कह रहा हूं। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि हमारे यहां जो सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, ये बहुत गंदे है, ये बहुत गंदे है। इतनी बदतमीज है कि खामिद बोलता है अपनी बीवी साथ, वो तू ही करती पई है, शर्म तो नहीं आती। यानी बांदियों के साथ भी ऐसा इंसान मामला नहीं करता। इतना बदतमीज है हमारा ये माहौल बीवी का और खामिद का कि शायद अफसोस की बात है, अदब ही नहीं है इन दोनों में। मुझे बताएं, एक औरत से आपने इतने काम लेने हैं, खाना उसने बनाना है, आपके बर्तन उसने धोने हैं, और बहुत सी आपकी ख्वाहिशात को उसने पूरा करना है, क्या आप तवक्का करते हैं कि उसके दिल में मोहब्बत होगी आपके लिए? एक आदमी से, एक वेयर हाउस से आपने एक चीज खरीदनी है, कितना चमचा गिरी करते हैं उसके, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब आपका, ठीक ठाक है, अच्छा बच्चे कैसे हैं जनाब, वाह वाह बड़ी अच्छी गाड़ी ली हुई आपने, और साफ आपने जाकर उससे माल लेना है उधार पे, एक माल उधार पे उठाना है, और आप उसकी चमचा गिरी कर रहे हैं। मैं तो मार्केट में रहा हूं ना, बिजनेस किया मैं जानता हूं ना, बिजनेस में अनुमत सारे मुझसे चिढ़ते थे कि ये आदमी आता है सीधा माल उठा के चला जाता है, माल तो मुझे क्या चमचा गिरी करनी, क्यों कैश देता था मैं, उधार का मामला नहीं रखा मैंने किसी साथ, तो चमचा गिरी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन लोगों को तमाशे देखता था कोने में खड़ा होकर कि देखो कितनी खुशामद कर रहा है ये शख्स उसकी कि उधार दे दे, कितना ढेकूफ है उसकी, कितनी खुशामद। तो अब एक जे माल आपने लेना है, खुशामद कर रहे हैं, तो जिस बीवी से आपने ये लेना है उसे इतनी तड़ी ठीक है, गंदी गुजारे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त पे वो आपसे इंतकाम लेती है। याद रखने की बात, आप पे एक वक्त पलटेगा, अल्लाह ताला फिर उसका साथ देता है। किसी के दिल से वो चीजें मिट नहीं सकती, हाँ अगर आप मिटाना चाहते हैं आज वक्त है, सुभान अल्लाह आज वक्त है। मन फत्ता सुभान अल्लाह तआला के एक रोजा खुलाओ। रोजा मतलब क्या कि तुम अपनी बीवी के साथ ऐसे मामलात को हदीये दो, मोहब्बत से पेश आओ, उसको रिस्पेक्ट दो। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी होती है, तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है तो उसके माँ बाप की इज्जत है। तुम्हारे माँ बाप आ जाए तो सब कुछ होना चाहिए, उसका माँ बाप आ जाए है कि आजन है वो फलां ये वो माशा। ये सब सूफीज्म की बातें कर रहा हूं मैं आपके, सूफियों के यहाँ जब तक ये माहौल नहीं होगा आप सूफी नहीं हो सकते, मैं भी सूफी नहीं हो सकता। किसी औरत का शिकवा ना हो जिस वक्त आप और मैं इस दुनिया से जा रहे हो, राजी हो आपकी बीवी आपसे। हाँ इसी तरह बीवी के लिए भी है, आखिर उसने भी तो खाम से लेने ना को या नहीं लेने। लेकिन यहाँ एक नुकता याद रख लें, यहाँ मुकाबला नहीं है। अगर खामिद बदतमीज है तो बीवी क्या ये बदतमीज है मैं नहीं करती, सही बात नहीं, नहीं। अपनी अपनी जन्नत क्यों खराब करती हो वो अपनी जन्नत क्यों खराब कर रही है, तू तो अपनी इबादत वैसे ही कर अल्लाह की रजा के लिए, तू तो अपनी इबादत वैसे ही कर, उसको जाने दे जहन्नम में। और ये भी याद रख आखिरत में बड़ा नुकसान होगा, अल्लाह ने वादा किया है कि नेक औरतें जो होंगी उनके निकाह वहां किन से होंगे, नेक मर्दों से होंगे। कोई मौलवी ले जाएगा आपकी बीवी को यार, क्योंकि नेक मर्द तो वही होंगे, मौलाना ही होंगे ना सारे, तो फिर क्या करेंगे आप। वहां तो बीवी गई आपके आस, वो कहेगी तो बत्तीमी मैं इसको लाइक नहीं करती, ला मेरे फलां मौलाना से शादी कर दीजिए, वो नेक आदमी है। तो मेरे भाई हो यहां पछताल है, बेहतर यह है कि इस माशरे को चेंज कर, जहां ऐसा माशरा होगा वहां बच्चे भी लड़ेंगे आपस में, लड़ाई होंगी, गाली ग्लोज यानी हर वक्त घर के अंदर बात करनी, बच्चों से गाली, बीवी से गाली, उससे गाली, और है बहुत बड़ा चौधरी, पता नहीं क्या समझता है अपने आपको, बहुत बड़ा ऊंचा उसने अपने आप को समझ लिया, हर बच्चे को बुला उसको भी गाली दे रहा है, बीवी उसको भी गाली दे रहा है, जिससे वो तो एक हिटलर बन गया घर में, वो तो अजीब माहौल हो गया घर के अंदर, किसी सीधी वो बातें कोई नहीं कर। ये हमारे आम माशरा 99% बता रहा हूँ आप। तो मेरे भाइयों वहाँ से शुरू करना चाहिए हमें काम, ये हमारे दिलों को रोज़ा कहता है कि भाई ऐसा रोज़ा ना रखो जिसमें कीना हो बकस हो, माशरे को सही करो, उसका तरीका बता दिया, खाना खिलाओ लोगों को पिलाओ, हदी दो, दिल खुश करो। उसमें एक बात और है कि मोहब्बत भी बढ़ती है इसमें, ज़रूरी नहीं आज किसी से आपको मोहब्बत है, अब ये तो नहीं किसी दुश्मनी हो, अब किसी से मोहब्बत है उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए भी ये फेल काम आ सकता है। सुभान अल्लाह, आप किसी से अपनी मोहब्बत को और बढ़ाना चाहते हैं, या आपको अपनी मोहब्बत में कमी नजर आ रही है लेकिन उसकी मोहब्बत आपके लिए जरूरी है। ऐसे भी तो होता है दुनिया के अंदर मामला कि आपको किसी से मोहब्बत चाहते हैं कि बहुत हो लेकिन उससे मोहब्बत में कमी है, तो फिर भी अल्लाह ताला ने ये अख्तियार की चीजें, खुद ब खुद दिल में मोहब्बत आ जाएगी, उस शख्स की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी, वो खुद ब खुद हाथ उठा देगा आपके लिए, आप उसके लिए हाथ उठा देंगे नाम। तो ये कौन बता रहा है हमें, किसने रिफर्श किया है, रमजान में रोजे नहीं होता। ये एक और पैगाम हमारे लिए, अल्लाह पाक हमारे दिलों से कीनों को निकाले और मोहब्बत को फरोग़ अता फरमाए।